सागर धर्मामृत लेक्चर नंबर 10।
ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वर्षायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्।
अथ नत्वार्हतो क्षूण चरणान् श्रमणानपि तद्धर्मरागिणां धर्म सागाराणां प्रणेश्यते। पंडित श्री आशाधर जी लिखित यह सागर धर्मामृत नामक ग्रंथ है और उसमें मुख्यतः श्रावक के धर्मों की यहाँ चर्चा की है। हमने यहाँ 17 नंबर पढ़ा था? नहीं पढ़ा, पढ़ना है। 31 नंबर पर हमने एक लाइन पढ़ी थी, दार्शनिक आदि श्रावकों का लक्षण कहते हैं। श्रावक की जो 11 प्रतिमाएं हैं, उन नामों से श्रावक को अलग अलग पहचाना है। हमने ये बात देखी थी कि केवल बाह्य में व्रतादि अंगीकार करना इतना ही उसका प्रतिमा का स्वरूप नहीं है, तो अंतरंग और बहिरंग, बाह्य में और अंतरंग में दोनों ही वो तो यथा योग्य होते हैं। मुख्यतः तो अंतरंग में क्या है, तो ये देखो 31 पृष्ठ निकालना। देखो विशेषार्थ में क्या लिखा है, प्रत्येक प्रतिमा के दो रूप होते हैं, एक भाव रूप या अध्यात्म रूप और दूसरा द्रव्य रूप या बाह्य रूप। बाह्य रूप देखा जा सकता है किंतु अंतरंग रूप को दूसरे लोग नहीं देख सकते, वह क्या है, स्वसंवेद्य है। और अंतरंग रूप में हमने क्या देखा था कि सुख की अनुसुख रूप है, क्योंकि यहाँ दो कषाय चोपड़ी का उदय नहीं है, अभाव है, हम कहेंगे दो कषाय विद्यमान है। और यहाँ आत्मा की अनुभूति से उत्पन्न जो आत्मिक रस या अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव वहाँ है, ये अंतरंग स्वरूप है उसका। ऊपर ऊपर की प्रतिमाओं में धारण करता है तो वहाँ अंतरंग में भी सुख की वृद्धि होती चली जाती। क्यों वृद्धि होती है, वो स्थिरता बढ़ती है। बाह्य व्रतों के कारण सुख की वृद्धि नहीं हो रही है, वो तो बाह्य में सहज रूप से वैसा आचरण होता है, परंतु अंतरंग में वितरागता बढ़ रही है और उसी हिसाब से बाहर में भी सहज रूप से वैसे वैसे अधिक कषाय यानी कषाय की अधिक मंदता चलती है और उसके कारण आगे आगे वाले बाह्य में व्रतों का अंगीकार होता है। हम यहाँ भी दर्शनिक आदि जो लक्षण बताए हैं उसके बाद हम 17 नंबर के श्लोक में पढ़ेंगे। दृष्ट्या मूल गुणाष्टकम् रतभरम् सामायिकम् प्रोषधम् सचित्तान्न दिनव्यवाय वनिता रम्भोपदी भ्योमता उत्पिष्टादपि भोजनाच्च विरतिम् प्राप्ता क्रमात्रा गुण प्रौढ़ा दर्शनिकादय सभवन एकादशो उपासका भवंती एकादश उपासका। उपासक यानी श्रावक, ये 11 प्रकार के श्रावक बताते हैं। कितने? दर्शनिक आदय यानी दर्शनिक आदि, हम उसका अर्थ नीचे पढ़ेंगे। देखो क्रम से पूर्व पूर्व गुणों में प्रौढ़ता के साथ क्या कहना चाहते हैं, पहली प्रतिमा है, दूसरी प्रतिमा है, तीसरी प्रतिमा है, तो पूर्व पूर्व प्रतिमा तो अंगीकार हो ही रही है, उसमें और दृढ़ता के साथ बिना उसमें कुछ दोष लगे आगे आगे की भी प्रतिमाएं ग्रहण की जाती है, धारण की जाती है। नहीं तो ऐसा नहीं कि पहले तो अभी उसकी कोई जरूरत नहीं, अभी आगे बढ़ते, ऐसा नहीं है। तो कहते पूर्व पूर्व गुणों में प्रौढ़ता के साथ यानी उसमें और दृढ़ता है। मैच्योरिटी मैच्योरिटी है कि हाँ प्रौढ़ता है, मैच्योरिटी है,
परिपक्वता है,
दृढ़ता है, यानी उसमें कुछ अतिचार भी लग सकते थे उस प्रतिमा में। यहाँ तो आगे की प्रतिमा धारण करता है तो पूर्व की प्रतिमा निरतिचार पलती है, उसमें थोड़े भी अतिचार वाले दोष नहीं लगते। तो कहते पूर्व पूर्व गुणों में प्रौढ़ता के साथ सम्यक दर्शन सहित आठ मूल गुण, ये जो अष्ट मूल गुण हम देखते वो तो सम्यक के पूर्व से ही, वो तो दामधारी जैनियों का वो तो कर्तव्य है, मालूम है कि नहीं? तीन तीन अष्ट मूल गुण कौन से है, आठ कौन से है मूल गुण? तीन मकार और पांच उदम्बर फलों का त्याग, इसको कहेंगे अष्टमूल गुण। अभी उसकी बात आएगी,
मकार भी पूछ रहे थे।
तीन मकार क्या होते हैं? और
मदिरा,
मध्य यानी मदिरा, मांस और मधु यानी शहद, हनी, जिसको मराठी में मध कहते हैं, हिंदी में मधु कहते हैं। तो कहते हैं सम्यक दर्शन सहित आठ मूल गुण, निरतिचार अनुव्रतादि, सामयिक क्रोशोपवास तथा सचित्त से, दिवा मैथुन से, स्त्री से, आरंभ से, परिग्रह से, अनुमत और उद्दिष्ट भोजन से विरति को प्राप्त ग्यारह श्रावक होते हैं। ये ग्यारह प्रतिमाओं के नाम बताइए, उसमें आगे विरति विरति लगा लेना। इन्हें पहली दर्शन प्रतिमा में देव दर्शन करने को दर्शन प्रतिमा नहीं कहते, सम्यक दर्शन तो दृढ़ता से है और बिल्कुल आठ मूल गुण से पालन होता है। दूसरी प्रतिमा में निरतिचार अनुव्रतादि का पालन, अनुव्रतादि क्यों कहा, अनुव्रत है, गुणव्रत है, शिक्षाव्रत है, इसलिए आदि शब्द डाला। इन सब का विस्तार से अभी यहाँ हम वर्णन देखने जा रहे हैं।
आठ मूल गुण जो है वो अलग प्रकार से भी कहे गए,
हाँ, अलग अलग प्रकार से कहे गए अलग अलग शास्त्र में।
पांच अनुव्रत को पालना भी है तो गुण में लिया जाता है, कई लोगों ने ऐसा,
हाँ कहीं कहीं लिया।
मैं एक जगह पे पढ़ा, जिन दर्शन पार्श्व जड़ रात्रि भोजन त्याग, पांच उदम्बर फलों का त्याग, मधु त्याग, मध्य त्याग, मांस त्याग और संकल्प की हिंसा का त्याग, कितने हो गए? आठ। उसमें पांच पांच उसका एक
मिलेगा। हाँ अलग अलग श्रावकाचारों में अलग अलग पद्धति से वर्णन है उस, बिल्कुल है। अभी इसका विशेषार्थ पढ़ेंगे हम। ये श्रावक के ग्यारह भेद हैं, प्रतिमाओं के आधार से श्रावकों के भेद बताए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अंतरंग स्थिरता भी अलग बढ़ती हुई है और बाह्य में भी उनके विशेष व्रतों का, विशेष विरतियों का पालन है। उनके नाम दर्शनिक आदि है, दर्शनिक श्रावक कहेंगे या दर्शन प्रतिमा वाले कहेंगे। आदि में क्योंकि पहले का नाम लिया, आदि में सभी ग्यारह इंक्लूड हो गए। जो सम्यक दर्शन के साथ आठ मूल गुणों का धारक है वह पहला दर्शनिक श्रावक है। तो आप पूछेंगे चौथे गुणस्थान वाला भी तो है, अष्टमूल गुण का धारण है उसके, तो सम्यक तो होने के पहले से पाल रहा है, तो सम्यक दृष्टि चौथे वाला भी है। और पहले व्रत प्रतिमा जो दर्शन प्रतिमा है उसका नाम भी दर्शनिक श्रावक है, तो उसमें भी सम्यक दर्शन की बात है, तो दोनों में अंतर क्या है? प्रतिज्ञा तो है ही, चौथे में सम्यक दर्शन के अतिचार लग सकते हैं, यहाँ निरतिचार हो गए। हमने आपको याद होगा तत्वार सूत्र में हमने पांच पांच जो अलग अलग जो बताए ना, पांच पांच उसके अतिचार की बात हमने देखी थी, वो यहाँ नहीं लगेंगे, ये बात दृढ़ता है वहां पर। जो सम्यक दर्शन के साथ आठ मूल गुणों का धारक है वह पहला दर्शनिक श्रावक है। जो निरतिचार अनुव्रत गुणव्रत और शिक्षाव्रत का पालक है वह दूसरा व्रतिक श्रावक है। व्रतिक कहो व्रती कहो या व्रत प्रतिमा कहो एक ही बात है। जो त्रिकाल सामायिक करता है वह तीसरा सामायिक प्रतिमा वाला श्रावक है। यह आत्मा त्रिकाल शुद्ध है वैसा नहीं त्रिकाल सामायिक, क्या डिफरेंस है? आत्मा को निज शुद्ध आत्मा को त्रिकाल शुद्ध कहा है और यहाँ त्रिकाल सामायिक कहा है, कुछ डिफरेंस है कि नहीं है? क्या डिफरेंस है?
ये सुभाव है माने
वो बात नहीं बची, यहाँ भी त्रिकाल शब्द है वहाँ भी त्रिकाल शब्द है,
तीन समय।
हाँ त्रिकाल है तीन समय तीन अलग अलग कालों में, वो त्रिकाल है अनादि अनंत, वो त्रिकाल वाली बात है। कहने की बात आत्मा त्रिकाल शुद्ध है कहेंगे, परम पारिणामिक भाव रूप है, वो त्रिकाल की बात है नहीं, वो अनादि से अनंत काल तक हर समय है। और यहाँ त्रिकाल है तीन संध्याओं में, तीन संध्या कहते हैं संधि काल, संधि काल यानी ज्वाइंट रात में और सुबह होती है उसके बीच वाला का प्रातः काल, फिर मध्यान्ह में दोपहर में 12 बजे और फिर शाम को दिन ढलता है और रात प्रारंभ होने वो जो ट्वाइलाइट कहेंगे उनको संध्या कहते हैं, ये तीन संध्या काल कहलाते हैं। देखो अन्य मतियों में भी वो संध्या का पाठ पढ़ता है, संध्या कहते उसको, पाठ को ही संध्या कहते हैं, हम संध्या पढ़ेंगे, यानी उनमें भी ऐसी कुछ है जो दिन ढलता है और रात शुरू होती है, शाम का जो पीरियड है उसको संध्या काल कहते हैं। ऐसे सायंकाल या संध्या काल हम भी कहते हैं, परंतु सुबह को नाम अलग है सायंकाल को नाम अलग है, संध्या काल जिसको कहेंगे, यानी कॉमनली शाम होती है वहां संध्या कहते हैं, संध्या काल प्रारंभ होगा, परंतु ये संध्या काल यानी संधि का जो काल है वो तीन बार आता है, ये बात बताए ना इसको त्रिकाल सामायिक करता है,
तीनों काल सामायिक का उनको, यानी ये तो क्या है बाह्य में सामायिक पाठ पढ़ना उसको सामायिक नहीं कहेंगे, लेकिन उस वक्त अपने स्वरूप में लीनता धारण करने की पूर्ति वह जीव करता है, इसके लिए उसको सामायिक प्रतिमा। बाह्य में लोग क्या मानते हैं कि तीन बार सामायिक पाठ बोलना चाहिए, अरे अरे हमारा समय का टाइम हो गया हम जाएंगे अभी, ये बात नहीं करेंगे,
यानी अन्य सर्व कार्यों से निवृत्त होकर बुद्धि पूर्वक बैठेगा और वो यहाँ तो सामायिक है, वो तो शुभ रूप शुभ भाव रूपी, यानी यहाँ तो जो सामायिक तप है वो मुनियों के होगा और ये सामायिक व्रत है, यहाँ तो बैठेगा शुभ भाव से पाठ आदि बोलेगा और यहाँ तत्वों का चिंतन भी करेगा और फिर स्वरूप में उपयोग लगाने की कोशिश भी होगी। मुनियों के तो उनका तो चलता है निरंतर छठा सातवां गुण स्थान, उनके तो सहज रूप से अवस्था चलती है, परंतु ये तीनों टाइम बैठकर बिल्कुल, ये जरूरी नहीं कि तीनों ही बार उसके आत्मा की अनुभूति हो, परंतु अन्य कार्यों से निवृत्त होकर तत्वों का विचार करना भगवान का नाम लेना ये जो सामायिक के पाठ बनाए हैं वो बोलेगा, परंतु केवल पाठ बोलना ये उसका स्वरूप नहीं है, उतनी वहां अंतरंग स्थिरता भी है और उतना अधिक सुख का अनुभव भी उसको होता रहता है। जिसके आत्मा की अनुभूति हुई है वो तो अन्य कार्यों से निवृत्त होकर जरूर कोशिश करेगा, एकांत में बैठेगा, भगवान का नाम लेगा, तत्वों का चिंतन करेगा और उस काल में आत्मा का अवलोकन करने में वो सक्सेसफुल भी होगा। देखो आगे देखते हैं, पहले तीन का नाम क्या है कौन बताएंगे?
हाँ,
बहुत अच्छा, ये तीन हो गए अपने। अब आगे, जो पर्व के दिनों में पोषधों को वास करता है वह चतुर्थ पोषधों को वासी श्रावक है। ये पर्व के दिन क्या होते हैं अश्विन में? खतरी नहीं है, नहीं विश्वास नहीं है। हाँ, वो बता दिया अपन इतनी इतना धीरे से। बोलो नितिन भाई, बोलो।
अष्टमी और
चतुर्दशी महीने में कितने आते हैं? दो अष्टमी और दो चतुर्दशी, चार पर्व आते हैं। तो पर्व के दिनों में प्रोषध उपवास करना इसका अर्थ क्या? अभी तीसो दिन करो ना मैं क्या। तो कहते देखो अष्टमी को और चौदस को चतुर्दशी जिसको कहते उपवास होगा पूरा, उसके एक दिन पहले यानी अष्टमी के पहले सप्तमी और चौदस के पहले त्रयोदशी एक आसन करेंगे। यानी दोपहर में एक भोजन ले लिया एक बार, फिर शाम का भोजन नहीं करेंगे। चौदस को तो या अष्टमी को तो पूरा उपवास, फिर जो एक पहला होता है उसको धारणा का दिन कहते हैं, फिर उपवास का दिन और फिर पारणा का दिन। पारणा के दिन में भी एक बार यानी वहां पर भी एक आसन करेंगे। एक आसन यानी एक आसन एक बार भोजन करना, एक आसन यानी एक ही आसन पर बैठ के बाहर ऐसा ही करता है बैठ के नहीं, प्रोषद के दिन मंदिर में या जो उपासना नहीं कहेंगे क्या, एकांत स्थल में जाके वहाँ रहेंगे और पूरा दिन स्वाध्याय में और जिसको हम धर्म ध्यान कहेंगे उसमें बिताएंगे। यह प्रोषद उपवास
मुनि
की जिस तरह से
मुनि
जैसा कुछ श्रावक होते हुए भी उतने काल तक मुनि जैसा आप ये कह रहे हैं। आगे पढ़ेंगे इसका विस्तार से वर्णन आने वाला है, अभी तो हम केवल उसके क्या नाम है उसको पढ़ रहे हैं। ये चौथा नंबर का हुआ पुरुषोपवासी श्रावक। जो सती सचित्त भक्षण आदि का त्यागी है वह पांचवा सचित्त विरत श्रावक है। सचित्त का अर्थ समझते हैं लक्ष्मी? सचित्त का अर्थ क्या है? सचित्त का त्यागी है नहीं क्या? देखो देखो सचित्त यानी
जीव, नहीं हुआ है,
जीव है और उसमें उत्पत्ति के योग्य वो स्थान है तो उसको प्रासुक करके खाने की विधि। सचित्त को अचित्त बनाया जाता है फिर भक्षण करके, जैसे पानी भी वो गर्म करके पिएंगे, फलों का रस है या नारियल का पानी भी ऐसा डायरेक्ट कच्चा नहीं लेंगे, उसको भी थोड़ा सा लो वार्म गर्म करके फिर उसका भक्षण करेंगे। फल भी है ऐसे डायरेक्ट नहीं खाएंगे, जैसे केला है या अन्य भी कोई फल है तो उसके छोटे टुकड़े करके फिर उसके ऊपर वो मसाला को नमक है मिरी है वो डालकर फिर उसका भक्षण किया जाता है। ज्यादा है ना मेरी आ रही है कोई लोत हो रहा है। हाँ देखो आगे पढ़ेंगे। सचित्त भक्षण आदि का त्यागी है वो पांचवा सचित्त विरत श्रावक है। देखो हरि का त्याग और सचित्त का त्याग ऐसे दोनों ही प्रकार के होते हैं। जो दिन में मन वचन काय से मैथुन सेवन नहीं करता, वह छठा दिवा मैथुन विरत श्रावक है। इस प्रतिमा का दूसरा भी एक नाम है रात्रि भोजन क्या, वो मनोवचन काय से कृतकारित अनुमोदना से, तो उसको वहाँ वैसे पहले से वो रात्रि भोजन का उसने त्याग किया है, फिर भी यहाँ जाके उसको वो नाम प्राप्त होता है। जो सदा के लिए स्त्री सेवन का त्यागी है वह सातवा स्त्री विरत या ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारी श्रावक है। यानी यहाँ तो स्व स्त्री का भी त्याग है, यानी पूरा ही ब्रह्मचर्य का पालन। जो संपूर्ण आरंभों का त्यागी है वह आठवां आरंभ विरत श्रावक है। आरंभ यानी घर में झाड़ू लगाना दी, ये भी आरंभ का कार्य है, उसमें हिंसा होती है, जीव हिंसा, ये संपूर्ण आरंभ का त्यागी है, वो आरंभ से विरत वाला है। आरंभ यानी वो तो बाह्य में भी व्यापार आदि का भी त्यागी होगा। आरंभ आरंभ का अर्थ होता है वो तो हिंसादि कार्य जिसमें हिंसा होती है उसको आरंभ कहते हैं। आरंभ के त्यागी में नहीं बनाएगा, घर के लोग उसको या मंदिर में अन्य श्रावक उसको बुलाते हैं। जो परिग्रह का त्यागी है वह नौवां परिग्रह विरत श्रावक है। जो आरंभ के कार्यों में अनुमति भी नहीं देता, कोई भी घर के सदस्यों को भी व्यापार क्या करूं मैं, व्यापार ये खोलने वाला हूं, ऐसा उसमें कोई अनुमति का नहीं होगा, वह दसवां अनुमति विरत श्रावक है। और उद्दिष्ट भोजन का त्यागी ग्यारहवां उद्दिष्ट विरत श्रावक है। उद्दिष्ट भोजन का त्यागी करते उनके उद्देश्य से बनाया हुआ भोजन वो ग्रहण नहीं करे। श्लोक में उद्दिष्ट के साथ जो अपि शब्द रखा है ऊपर लिखा देखो, उद्दिष्टात अपि भोजनाच्च विरतिम, उसका अभिप्राय यह है जो अनुमत और उद्दिष्ट भोजन भी नहीं करता वह कैसे अन्यत्र आरंभ आदि पाप कार्यों में अनुमति देगा, या कैसे उद्दिष्ट वसति का या वस्त्र आदि का उपयोग करेगा। उद्दिष्ट वसति का यानी वसति का यानी रहने का ठिकाना, उनके उद्देश्य से कोई बनाई है वसति का उसका भी वो त्याग, उनके उद्देश्य से कोई वस्त्र देता है तो उसका भी त्याग हो। आगे आगे की ये प्रतिमाएं वस्त्र क्वेश्चन मार्क कैसे करेगा, नहीं करेगा। आगे आगे की ये प्रतिमाएं तभी मान्य होती है जब पूर्व पूर्व की प्रतिमाओं में परिपक्वता हो, प्रौढ़ता बताए ना, परिपक्वता हो, इसीलिए आपने मैच्योर बताया। अर्थात पीछे को छोड़ आगे को दौड़ की नीति यहाँ नहीं चलती। क्या कहा? पहले का सपाट आगे का पाट। पीछे के छोड़ आगे के दौड़ने दे, पहले पहले को तो वो कैसे भी चलेगा, अब वो भूल भी जाएगा, नहीं भी करेगा, डायरेक्ट आगे की बात सोचेगा, अंगीकार करेगा। इसको क्रमभंग भी कहा है शास्त्र में, ये क्रम से ही अंगीकार की जाती है। सामायिक क्रोशदो उपवास नहीं किया, ब्रह्मचर्य धर्म के अब सातवीं प्रतिमा धारण कर दी, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं अंगीकार करेगा, शक्ति न हो का अर्थ क्या है, शक्ति नहीं होती तो उसके अंतरंग में वैसी स्थिरता भी नहीं है। हाँ, शारीरिक नहीं पात्रता तो होती तो नहीं अंगीकार करेगा, ये कोई जरूरत नहीं है कि वो बाह्य नहीं ले पाएगा, उसकी उतनी कमजोरी है तो समय दृष्टि, और उसको ऐसी जल्दी भी नहीं है कि मैं क्यों नहीं अभी आगे बढ़ूं। अंतरंग में स्थिरता होगी तो वैसे बाह्य में भी पात्रता सहज हो जाती है, वो सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है।
आप जो बता रहे हैं, आवाज आ रही
है? हाँ हाँ है।
कुछ साल पहले की बात है, एक भाई साहब कोल्हापुर से आए थे,
उनको बताया था पहले तत्व ज्ञान सीखो बाद में मुनि व्रत लेना।
ऐसा बहन कहती है ना, शक्ति नहीं तो क्या करेगा।
नहीं, कोई साथ साथ प्रतिमाएं देखते हैं
उसको प्रतिमा मत कहो, ब्रह्मचर्य भले पाले उसको। हाँ, सात प्रतिमा तो उनके पहले सब होनी चाहिए, तभी तो सातवीं प्रतिमा कहेंगे। अगर वो पहली प्रतिमा नहीं पाल रहे हैं तो उसके सातवीं प्रतिमा भी नहीं है। ख्याल में आई ना? वो है ही नहीं अंतरंग, बाह्य में ही बस। अपने से कड़क वो खाली उसी की महिमा आती, कड़क कड़क सब
बात है कि बाह्य आचरण से कुछ लेना देना
नहीं, कैसे कर सकते ये आपका प्रश्न है। तो उसमें क्या, जो हम ट्राई करेंगे वो कर सकते हैं। ये प्लेयर्स इतने इतने घंटे कैसे खेल सकते हैं मैदान पर, उन्होंने उसकी प्रैक्टिस की है, उन्होंने वैसा सोचा मैं करूंगा तो। मगर वो अपने उसका मैं करता हूँ मानकर उसका कंट्रोलर बने। अभी गिनीज रिकॉर्ड में क्या क्या नहीं करते, वैसे ये भी है, कर सकते। उसमें क्या, जो ठान ली वो कर दिखाते हैं, परंतु वहाँ वो कर्तृत्व का अभिमान पड़ा है इसके पीछे। मिथ्यात्व तो अभी तो उसके विचार ही नहीं, उसके मिथ्यात्व तो क्या है, कैसे जा सकता है। तत्व ज्ञान का तो कोई विचार नहीं है, ना आत्मा की अनुभूति है, ना वहाँ सुख की अनुभूति है। बस ये हम कर दिखाते हैं उसके जो, और फिर उसका अहम एक हो जाता है कि मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, देखो मैंने इतने किए हैं, फिर उसका अभिमान हो जाता है। कहाँ अच्छा किया
उन्होंने,
इतना कम करके अभी मेरे बारी
तो इतना करके कर सकती। तो वो अनुमोदन हुई उसके लिए, तो उसको तब तू अच्छा करती क्यों बोलना, वो तत्व ज्ञान सीखो बोलना, ये भी सीखो उसके साथ। हाँ, नहीं बोलने का क्यों जरूरत है क्या, अच्छा किया, क्योंकि ये धर्म के बारे में है। हाँ, कोई स्कूल में अच्छे मार्क्स मिलाते तो उन्हें अच्छे के हम जरूर कहेंगे, वहाँ कोई धर्म की बात नहीं है। पंत यहाँ धर्म मानकर कर रहे हैं तो क्यों बोले तुमने अच्छा किया, जरूरत क्या है उसको ठीक लगे इसलिए। ख्याल में आई बात,
तो
बिल्कुल होगा ही, होगा ही, क्यों नहीं है।
पहले गुण स्थान से जो
सातवें में गया तो मुनि योगी, उसने आगे के और आगे के पहुंच गया है, वो तो और आगे के पहुंच गया, उसके तो ये सब है,
सब है ना। प्रतिमा अलग से ली नहीं है, लग रहा है
प्रतिमा अलग से ली होगी ना उसके, प्रतिमा लेते हुए भी पहले में पड़ा था, तो पहले से ही सातवें में गया कहेंगे हम।
पहले से सातवें में जाएगा वो बाह्य में द्रव्य लिंग,
वो द्रव्य लिंग ने मुनि व्रत लिए है, श्रावक की क्या बात कर रहे हैं, मुनि व्रत लिए उन्होंने,
वो बाह्य में इतने सही रूप से ये व्रतों का पालन होगा, वही जो सातवें में जाएगा।
तो उनके प्रोषदोप तो होते ही, उनको अष्टमी चौदस तो उपवास है और रोज का बाकी एक ही बार भोजन करते हैं, उनके तो ब्रह्मचर्य तो है ही है, वो तो सब सभी उसमें तो महाव्रतों का अंगीकार किया है, अनुव्रतों की क्या बात है।
लेकिन यहाँ एक खतरा है, बाह्य महाव्रत पालन करने से सातवां मिलेगा ऐसा नहीं, ये ध्यान रखना।
बिल्कुल, उनके जो अंतरंग में उतनी विशुद्धि हो जाए, सातवें गुणस्थान के योग्य भीतराकता हो जाए, आत्मा की अनुभूति हो जाए, तभी उसको वो प्रकट हो सकता है। बिना तत्व ज्ञान के, बिना आत्मा के, अवलोकन के तो नहीं होगा। ये कंडीशन है कि बाह्य में उसने अंगीकार किए होने चाहिए। ऐसे घर में बैठा है, गृहस्थ है, कपड़े अंगिक धारण किए हुए है और बस सातवां गुणस्थान प्रकट हो गया और बाद में जाके मुनि दीक्षा ली, ऐसा नहीं होगा। फिर बाद में लेने की क्या आवश्यकता है, कपड़े के साथ ही हो सकता है ना,
होता ही
नहीं कभी। पहले से सातवें में जाने वाले को तो इससे और ज्यादा व्रतों का अंगीकार है।
अभी हमने जो कोल्हापुर वाला जो उदाहरण देखा उसमें शरीर रूप मैं हूँ ऐसा ही मान के बैठा है ना, तो क्या भूमि लेके खड़ा करेगा।
लोगों की ऐसी भूल है कि मैं इतने तक पहुंचा हूँ, मैं भी दूसरी प्रतिमा है मेरी, अपनी सातवीं प्रतिमा है मेरी, ऐसा चलता है। आपने कहा वो तो अपने यहाँ महाराष्ट्र में चलता है, बहुत ऐसा देते थे ना। तो प्रतिमा देने वाली स्टोरी मालूम है कि नहीं मालूम है, संजय देवर नाम का पंडित है, अभी तो पंडित बना है, पहले बच्चा था और ऐसे ही घर से बाहर निकला, किसी मुनि संघ में जाके पहुंचा,
घरदार छोड़ के निकल गया तो जाके।
वो तो बाद में, वो तो उसको बाद में वहां से वो लाया उसके माता पिता ने, तो कहीं ऐसे किसी के चपेट में आ गया, जैसे किसी ने पहुंचा दिया किसी महाराज के पास, तो उन्होंने बोला कि मैं कल तुम्हें प्रतिमा दे दूंगा, तो खुश हुआ कि मुझे प्रतिमा नहीं होती थी कि मूर्ति मिलेगी भगवान की, उसको भी प्रतिमा जी कहते हैं ना, तो मुझे प्रतिमा मिलने वाली, प्रतिमा मिले, खुश हो गया एकदम। तो दूसरे दिन तो उसको जो कोई मंत्र विधि वगैरह दी उसको बताया होगा ऐसा ऐसा करना, तो प्रतिमा दो ना, प्रतिमा नहीं दी, मुझे प्रतिमा नहीं मिली, 11-12 साल का बच्चा या छोटा ही होगा, तो कहाँ है प्रतिमा, दे दी नहीं तेरे को प्रतिमा, तो कहाँ है। तो इस तरह से, और घर के लोग तो उसको ढूंढते ढूंढते कहीं पहुंच गए, फिर वहां से उसको लाया और कुंभोज बाहुबली में वहां विद्यालय चलता है, वहां गुरुकुल चलता है, वहां जाके उसको रख दिया, वहां कुछ पढ़ाई की, फिर उन लोगों ने, गजाबेन वगैरह ने उसको जयपुर भेजा, 10वीं के बाद वहां वो चलता है ना महाविद्यालय, तो वहां भर्ती किया। पहली बार हमने देखा था ऐसे ब्रह्मचारी जैसे, वो जाड़े जाड़े कपड़े ऐसा मेले ऐसा और बिल्कुल चकोट माथे का, एक दो साल तक तो ऐसा ही रहता था, बाद में पढ़ा के अभी बहुत अच्छा पंडित
होता है।
मंगलायतन में अच्छा है, अभ्यास अच्छा है। तो ये प्रतिमा का अर्थ होता है केवल बाह्य आचरण भी नहीं, लोग तो वो भी समझते नहीं, बस हमने प्रतिमा अंगीकार की, यानी ये तो कंटिन्यूस होनी चाहिए, पूर्व पूर्व प्रतिमा अंगीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। डायरेक्ट जंप लेके कोई व्रत अंगीकार किया और हम वहां पहुंच गए ऐसा मानते हैं, ऐसा मानने वाले बहुत मिलते भी हैं, इसको क्रमभंग कहेंगे। यानी यहाँ समय दर्शन का पता नहीं है, तत्व ज्ञान की कोई मालूमात नहीं है, और कोई अमुक एक हमने व्रत अंगीकार किया, हम वहां उस प्रतिमा तक पहुंच गए ऐसा मान लेते हैं। यानी कोई एकाद व्रत अंगीकार किया परंतु उसको मान्यता में मैं ऊपर चढ़ गया हूं, मेरी ये प्रतिमाएं मान लेता, ये गलत है। उसका सही प्रयत्न कैसे होना चाहिए, सम्यक दर्शन पूर्वक ये सभी बातें। सम्यक तो बिना व्रतों को क्या कहा है मालूम है शास्त्र में, नहीं अंक बिना बिंदी, नहीं समझे, नहीं समझे। एक करोड़ में कितने जीरो है, गिनो ना, छह के साथ है, एक के ऊपर 7 जीरो है, एक तो कभी भी मिलाएंगे हम, 7 जीरो पहले इकट्ठे करेंगे। तो हमने 7 जीरो इकट्ठे किए, ये 4 और ये 3, कितनी वैल्यू हुई,
जीरो।
एक नहीं लगाया, इनकी वैल्यू कितनी है, उन्होंने इतना सब किया ना व्रत तब, उसके पहले सम्यक दर्शन रूपी वो एकड़ा नहीं लगाया, तो इसकी वैल्यू कितनी, जीरो।
वही मेन है,
वो एक भी होता तो उसकी वैल्यू है।
हाँ,
ये सात जीरो की भी कुछ वैल्यू नहीं है,
रुकिए मैं बताइए तो जल्दी खा
जल्दी खा
लेकिन सेलिब्रेशन पीना क्या नहीं करना ऐसा भी नहीं,
ऐसा कहाँ था
नहीं करना का अर्थ क्या है, वो समझ कर के ये सम्यदर्श ये धर्म नहीं है ऐसा मानो ना।
ये तो यहाँ पर व्रत अनुव्रत करो का व्रत करो
निषेध नहीं, उसका
पालन का कोई निषेध कोई नहीं करेगा, अब करता है वो गलत कर रहा है लेकिन उससे
धर्म की शुरुआत नहीं
है। पालन करने से वो अभी टाइम में बता रहे मैं कुछ सबसे आगे बढ़ गया हूँ, अब इतना भी नहीं करते मैं ये कर रहा हूँ ऐसा मानना या अपने को सर्टन प्रतिमाधारी या मूलगुणधारी ऐसा सबको मानना अपने को वो गलत है, ऐसी मान्यता अपनी न बने, बाह्य में जो चलता है चलने दो लेकिन मेरी मान्यता में क्या मैं ऐसा मान रहा हूँ नहीं मान रहा हूँ तो ठीक है तो फिर बिल्कुल आप व्रत पालन करो
वैसे तो
आप हाँ। अपनी भूमिका के अनुसार अभी मैं मानता हूँ जहाँ तक कि आपने आलू प्याज आदि कंदमूल का त्याग किया, कोई आपसे जबरदस्ती कर रहा था कि आपने किया है लेकिन उस वक्त भी आप जानते हैं कि ये करने से मुझे कोई धर्म की शुरुआत तक नहीं हुई, या भी हमारा ऐसा मानस है ना, ऐसे ही आगे के जो अनुव्रत है उसका भी बिल्कुल पालन करो लेकिन उसके साथ सम्यक दर्शन नहीं है तो समझना ये धर्म नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए उसका अगला व्रत पकड़ना चाहिए ये सम्यक दर्शन को एक बोलते हैं
इन्हें वो व्रतों का निषेध नहीं है, बार बार वही बात हो रही। टोडरमल जी का वाक्य आपको मालूम है, हमने बहुत बार बताया भी है कि तब तक वो तो प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो परंतु मान्यता इसी रखो कि वो तो तब विचार से ही धर्म शुरू होगा समय दर्शन मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आपके पीछे है, वहां तो कहा कि तब तक प्रवर्तन करो करके, क्योंकि नहीं तो क्या करेगी अशुभ में प्रवर्तन करेगा, नहीं नहीं लेफ्ट साइड आप बैठे ना उधर है बीच वाले सेंटर के कंपार्टमेंट वो सेंटर में वो कलर वाला ना कोई भी नहीं बात हाँ हाँ
बात यह है कि हमें पहले देखो पुण्य करने का कोई निषेध नहीं करेगा लेकिन निषेध इस बात का हो रहा है शास्त्रों में कि पुण्य से धर्म होता है इस छोटी मान्यता, यानी हम तत्वों की बात कहेंगे तो आश्रव करने से संवर होता है ऐसी अगर हमारी मान्यता है तो सही नहीं है, यही बात है अन्यथा कुछ नहीं। और हम जब कहते हैं हम यानी आगम में शास्त्र में जो बातें बताते हैं और उसको हम दोहराते हैं तो लोग तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो पुत्र का निषेध कर रहे हैं, उसको तो करना क्या नहीं करना इसका यह अर्थ है आप हमको बराबर राय देना कि हमें क्या करना चाहिए, पुण्य परिणाम तो होंगे ही नहीं होंगे ये हो ही नहीं सकते, कल ही मैंने बताया था परसों अधिक से अधिक एक अंतर मुहूर्त तक ही आपके पुण्य परिणाम चलेंगे, उसके बाद नियम से अगर समय तो अगर नहीं है तो स्वाप परिणाम होने वाले हैं वो भी एक अंतर मुहूर्त चलेंगे।
देखो यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 226 पेज पर आश्रव तत्व के अन्यथा रूप में बताया है, तो कहते हैं कि पुण्य और पाप दोनों का ही स्वरूप बताया आश्रव में, तो हिंसा में मारने की बुद्धि होती है वगैरह वगैरह बताया, अहिंसा में रक्षा की बुद्धि, ये बातें बताकर आगे बताते हैं कि अपनी प्रशस्त राग परिणति से आप ही पुण्य बांधता है, वहां द्वेष परिणति से आप ही पाप बांधता है और यहाँ प्रशस्त से आप ही पुण्य बांधता है, इस प्रकार दोनों है ये, क्योंकि दोनों का बंध हो रहा है, दोनों है यानी छोड़ने योग्य है, ये छोड़ने योग्य है मान्यता में लेना, जहां वितराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्ते वहां निर्बंध है सो उपादेय है, यानी वितरागता है वो उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य है प्रकट करने योग्य है और पुण्य पाप छोड़ने योग्य है, बंद हो रहे ना वहां पर, तो कहते सो ऐसी दशा न हो तब तक, ऐसी यानी कैसी वितराग दशा न हो तब तक प्रशस्त राग हो प्रवर्तन करो, परंतु श्रद्धांत तो ऐसा रखो। कहाँ रखना ये श्रद्धांत कि यह भी बंध का कारण है। जब शुभ और अशुभ दोनों ही बंध के कारण है तो क्या करना दिन भर? अभी तो वितराग दशा नहीं हुई है तो अधिक से अधिक तो शुभ रूप प्रवर्तन करेगा, यानी कोशिश पूर्वक सावधानी पूर्वक वो शुभ में लगने की चेष्टा करेगा। बंध का कारण है ये श्रद्धान में इसे मोक्ष मार्ग जाने तो मिथ्या दृष्टि ही हो। श्रद्धान की बात है तो ये तो शोभाव रूप भी प्रवर्तन करेगा, व्रतों का अंगीकार भी करेगा, परंतु ये बंध का कारण है ऐसे उसके पीछे मान्यता सही होनी चाहिए। यहाँ पर भी देखो तत्व विचार की मन होता था ना, अशुभ बचने के लिए उसके शोभाव आते ही है। आगे भी लिखा ना तत्व विचार की महिमा, तो जो व्रत आदि करता है बहुत पूजन विधान करता है बहुत शास्त्रों का अभ्यास करता है परंतु तत्व विचार नहीं करता है तो उसके तो सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं। ये 260 पेज पर लिखा है। और तत्व विचार वाला इसके बिना भी करता है नहीं, वो तो करने वाला अगर व्रत आदि अंगीकार कर रहा है और तत्व विचार कर रहा है तो हो जाएगा ना, अच्छा उसको भी हो जाएगा सम्यक्त्व। निषेध तो बिल्कुल नहीं, पलता है तो अच्छी बात है। यहां हम आए 33 पेज पर 33 नंबर आगे की प्रतिमा वाले श्रावक को पूर्व की सभी प्रतिमाओं का एका दूसरी का नहीं सभी प्रतिमाओं का आचरण पूर्ण रीति से करना ही चाहिए। इन प्रतिमाओं के छठे भेद को लेकर आचार्यों में मतभेद है, यानी उसका दो अलग अलग पद्धति से निरूपण भी आता है। आचार्य समंत भद्र ने छठी प्रतिमा को रात्रि भुक्ति भुक्ति यानी भोजन रात्रि भुक्ति विरत यानी रात्रि भोजन का त्यागी नाम दिया है। वह रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करता है। ये चार प्रकार के आहार कौन से हैं अश्विन भाई? ये देखो फुट नोट देखो एक नंबर लिखा है ना समंत भद्र ने क्या कहा है रत्नगण शावकाचार में, अन्नम पानम खाद्यम लेयम न अश्नातियो विभावर्याम सचरात्रि भुक्ति विरता सत्वेशु अनुकंप्य मानमनाः। सत्वेशु ने प्राणियों के प्रति अनुकंपा है उसके, इसलिए रात्रि भोजन का त्याग किया। ऊपर लिखते चरित पाहुड गाथा 21 प्राकृत पंच संग्रह 136 वारस अनुवेखा गाथा 69 गोमटसार जीवकांड गाथा 476 और वसुनंदी श्रावकाचार में छठी प्रतिमा का नाम राई भक्ति ही है, इन्हें रात्रि भक्ति का त्याग। ये सब उसमें नीचे उन्होंने उसके रेफरेंसेस दिए जैसे चरित्र किसमें देखो पहले चरित्र पहुड़े दो अकड़ा लिखा है उसमें क्या लिखा है दंसन वय सामाय कोश सचित राय भक्तीय ब्रह्मारम्म परिग्रह अनुमण उद्दिष्ट देश विरदे दे। फिर प्राकृत पंच संग्रह बताया उसका तीन आंकड़ा कहाँ दिया अभी
तीन आंकड़ा पांच के ऊपर दिए अच्छा श्वेतांबर योग शास्त्र
टीका वो तीन है वो उसका दिया ना रेफरेंस। अब कहते महापुराण पर्व 10 में दिवा स्त्री संग त्याग नाम दिया है, दिवा यानी दिन, स्त्री का संग का त्याग। सोमदेव के उपासकाचार, उपासक यानी श्रावक, श्रावकाचार में तीसरी प्रतिमा अर्चा, पांचवी आमनाए में, नहीं नहीं तब मैंने नीचे गई, मैं एक लाइन नीचे गई, ठीक है। तीसरी प्रतिमा अर्चा, पांचवी प्रतिमा अकृषि क्रिया यानी कृषि कर्म न करना, और आठवीं प्रतिमा सचित्त त्याग है। कहाँ क्या बातें आई है उसका यहाँ रेफरेंस उन्होंने दिया है। अर्चा यानी पूजन। श्वेतांबर आमनाय में योग शास्त्र टीका में पांचवी प्रतिमा पर्व की रात्रि में कायोत्सर्ग करना, अब छठी प्रतिमा ब्रह्मचर्य, सातवीं प्रतिमा सचित्त त्याग, आठवीं प्रतिमा स्वयं आरंभ न करना, नवमी दूसरे से आरंभ न कराना, दसवीं उद्दिष्ट त्याग, और ग्यारहवीं साधु की तरह निस्संग रहना, केश लोच करना आदि है। यह अंतर है, कहां क्या अंतर है उन्होंने बता दिया। पंडित आशाधर जी के उत्तरकालीन यानी उनके पश्चात हुए पंडित मेधावी ने तो अपने श्रावकाचार्य को आशाधर का ही शब्दशः अनुकरण करते हुए रचा है। पंडित राजमल ने अपनी लाठी संहिता में दिवा मैथुन विरत और रात्रि भोजन विरत दोनों का ही संग्रह किया है, यानी दोनों ही नाम दिए। जो लास्ट लाइन है ना फुटनोट में, किंच रात्रौ यथा भुक्तम वर्जनीयम ही सर्वदा, दिवा योषित व्रतम चापी षष्ठ स्थानम परित्यजित। अब कृषि आदि छह कर्मों के द्वारा, कर्म ने कार्य आजीविका के लिए जो करते हैं उसको कृषि आदि छठ कर्म कहते हैं। सुना है कभी नहीं? असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य सेवा, वाणिज्य शिल्प कहते हैं, सेवा भी कहते हैं ना। अब कृषि आदि छह कर्मों के द्वारा आजीविका करने वाले गृहस्थ को पाप अवश्य होता है, क्योंकि जो कुछ कार्य कर रहा है पैसा कमाने के लिए तो वहां तो हिंसा तो होती है, पाप भी लगता है। तो पाप को दूर करने में निमित्त पूजा आदि धर्म कर्म की सिद्धि के लिए उस पाप को प्रायश्चित और पक्ष आदि के द्वारा दूर करने का उपदेश करते हैं, यानी जो उसके लौकिक जीवन में डेली लाइफ में पाप लगता है तो वो पाप दूर करने के लिए क्या करना उसकी बात अभी यहाँ बताएंगे। अब ये 18 नंबर का जो श्लोक है उसको पढ़ेंगे हम 34 नंबर के पृष्ठ पर। नित्याष्टानिक सच्चतुर्मुख महान कल्पद्रुमेन्द्र ध्वजा विज्ञा पात्र समक्रियान्वय दया दत्तिस्तपः संयमौ स्वाध्यायं च विधातुमादृत कृषि सेवा वणिज्यादिक शुद्ध्याप्तोदितया गृही मललवम् पक्षादिभिश्चक्षिपे। अभी इसका अर्थ देखेंगे हम, ये पाप जो लगता है वो कैसे दूर करे उसका उपाय बता रहे। कृषि सेवा, सेवा ही ना बात ना, व्यापार आदि छह आजीवन कर्मों को ये असी मसी कृषि आदि कहते हैं। असी यानी तलवार, असी करते थे तलवार, तलवार चलाने वो तो जो पहले के जमाने में सैनिक यानी जो राजा के आश्रित होकर सेना युद्ध करने का जो कुछ कार्य करते थे उसके लिए उनको कमाई होती थी। मसी यानी स्याही यानी अकाउंटिंग, लिखना, लेखन के यानी कोई किसी को जैसे शास्त्र होते थे वो शास्त्र जैसे के जैसे लिख डाले, किसी के अकाउंट हिसाब किया, कोई लिखने का कार्य करके पैसा कमाए। ये मसी, असी मसी कृषि तो समझते हैं खेती व्यापार है, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य, वाणिज्य यानी व्यापार और सेवा, सेवा यानी काम करके दूसरे का कुछ धन कमाना, उसको सेवा कहेंगे। विद्या यानी अभी गायन विद्या है, नृत्य विद्या है, वो करके वो जो पैसा कमाते हैं ऐसा कलाकार है, शिल्प है, हाँ। सेवा 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 ते आदि आजीवन कर्मों को यथा योग्य स्वीकार करने वाले गृहस्थ को नित्य पूजा, अष्टांगिक पूजा, अष्टांगिक अष्टांगिक होता है अष्टांगिक नीचे के वो चाहिए ना, वो अष्टांगिक अष्टांगिक आठ दिन में होती है ना, इसलिए अष्टांगिक कहते हैं। सच चतुर्मुख पूजा, कल्पद्रुम पूजा और इंद्रध्वज पूजा को तथा, ये तो पूजा है अलग अलग बताई। अब कहते दत्ती, दत्ती यानी दान, पात्र दत्ती, समक्रिया दत्ती, अन्वय दत्ती और दया दत्ती को ये बताएंगे अभी क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे दान, तथा तप संयम और स्वाध्याय को करने के लिए, ये स्वयं गृहस्थ को करने के लिए बताया है, नहीं तप संयम और स्वाध्याय तो गुरुओं के द्वारा करने के लिए, परापर गुरुओं के द्वारा, परापर यानी परंपरा से जो चली आ रही है बात, कहे हुए प्रायश्चित्त के द्वारा तथा पक्षचर्या साधन के द्वारा पाप के लेश को दूर करना चाहिए। पूरा पाप तो नहीं हटेगा परंतु अभी उसको कम करने की, यानी वो ये शुभ भाव रूप बातें, वहां तो लौकिक में तो वो पाप लगता है, तो ये शुभ क्रियाएं बताई है श्रावक के लिए। विशेषार्थ भगवत जिनसेनाचार्य ने अपने महापुराण के 39वें पर्व में कर्तृन्वय क्रियाओं का वर्णन करते हुए दूसरी सद्गृहित्व क्रिया का कथन किया है। उसमें यह सिद्ध किया है विशुद्ध वृत्ति को धारण करने वाले जैन ही सब वर्णों में उत्तम है, वे ही द्विज है। द्विज यानी द्विजन्मा, दो बार जन्म होता है, कैसे ब्राह्मणों का दो बार होता है, हाँ। ये तो जन्म धारण करता है ना, तो कहते वो तो दूसरा जन्म क्यों कहा, क्योंकि उसमें तो ये व्रतों का अंगीकार वगैरह होता था, जैसे हमारे में भी कहते ना 8 वर्ष के बाद हम कितने व्रत अंगीकार कर सकता है, तो ऐसे वहां पर भी उनमें जो कोई धर्म के लक्षण है उसको अंगीकार किया जाता है, जिसको कहें ना, जिसको कहें ना, हम क्या कहते हैं उसका, प्रतिज्ञापूर्वक उनके, हाँ मंत्र भी है और वो जनेवे हुए पहनाते हैं उनके, पहले के जमाने में उनके वो भिक्षा से लाना, वो पढ़ाई करना आदि सभी बातें होती थी, तो उसके लिए उनको द्विज कहते थे। यहाँ तो जैनियों के लिए वे ही द्विज है कहते हैं, वे ब्राह्मण आदि वर्णों के अंतर्गत न होकर वर्णोत्तम है, ये क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और शूद्र ऐसे 4 वर्ण बताए हैं, तो कहते जैन तो सबसे उत्तम है। आगे आचार्य कहते हैं यहाँ शंका हो सकती है जो असी मसी आदि 6 कर्मों से आजीविका करने वाले जैन द्विज अथवा गृहस्थ है उनके भी हिंसा का दोष लग सकता है, जैनी हुए तो क्या हुआ, कृषि आदि करेंगे तो उनके तो भी तो दोष तो लगेगा। इस विषय में हमारा कहना है आजीविका के लिए 6 कर्म करने वाले जैन गृहस्थों को थोड़ी सी हिंसा अवश्य लगती है, परंतु शास्त्रों में उन दोषों की शुद्धि भी बतलाई गई है, उनकी विशुद्धि के 3 अंग है पक्ष, चर्या और साधन। इसी का कथन पंडित आशाधर जी ने किया है। इन्हीं तीनों के आधार पर उन्होंने श्रावक के पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक भेद किए हैं। यानी पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक और साधक। इनसे पूर्व किसी श्रावकाचार आदि में ये भेद नहीं मिलते, उनमें ये पहली बार मिलते हैं। आचार्य जिनसेन ने गृहस्थ के षटकर्म ईजा, वार्ता, दत्ती, स्वाध्याय, संयम और तप बतलाए है। देखो नीचे लिखा है, इज्जा वार्ता च दत्तिम च स्वाध्यायम संयमम तप, ये महापुराण में उन्होंने बताया। ये हमने वो उसमें देखा था ना कि विद्याधरों में भी ऐसे ये षटकर्म बताए उनके लिए। इज्जा यानी जो अपने से जो देव गुरु आदि की पूजा करना, वो इज्जा है। पंडित आशाधर जी ने वार्ता को छोड़कर शेष पांच ही गिनाए हैं, क्योंकि धर्म कर्म पांच ही है। वार्ता तो कृषि आदि षटकर्म रूप है जो आजीविका से संबद्ध है। ऊपर भी मेरे ख्याल से लिखा है, ये नित्य पूजा वगैरह क्या क्या है उसके बाद ये ऊपर बताइए। देखो एक ऊपर जरा ऊपर का श्लोक देखते हैं। याच पूजा जिनेन्द्राणाम नित्य दानानुषंगिनी सच नित्यम होगे यो यथा शक्त्युपकल्पिता। यानी रोज की जो पूजा करते हैं वो तो नित्य पूजा का हमने देखा था ना अभी यहाँ पर, नित्य पूजा, अष्टांग पूजा, चतुर्मुख पूजा वगैरह। नीचे मेरे ख्याल से उसका वर्णन किया होगा, नीचे के पैराग्राफ में है, हम वहां से पढ़ेंगे, क्योंकि संस्कृत पढ़ने से तो आपको तो ख्याल में नहीं आएगा, हम डायरेक्ट हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। अभी हम तीसरी लाइन पढ़ रहे थे। देखो यहाँ जो आचार्य जिनसेन ने छह बातें बताई, इज्जा, वार्ता, दत्ती, स्वाध्याय, संयम और तप। इसमें जो वार्ता है उसका अर्थ है वो गृहस्थों के योग्य जो षटकर्म बताए हैं आजीविका के, धर्म से उसका संबंध नहीं है, इसलिए बाकी पांच जो है उसको तो इन्होंने ले लिया उसमें से। तो कहते इन्हीं पांच कर्मों में गुरु उपासना को सम्मिलित करके आचार्य सोमदेव ने श्रावक के छह दैनिक कर्म बतलाए। यानी प्रत्येक श्रावक को डेली, दैनिक करते क्या है, डेली, प्रतिदिन करने योग्य जो कार्य बताए छह प्रकार के, और उन्हीं का अनुसरण आचार्य पद्मनंदी ने अपनी पंचविंशतिका में किया है। यानी पद्मनंदी पंचविंशतिका में, जो हमेशा हम देखते हैं ना सोमदेव उपासका अध्ययन में, उपासका चार में, वो ये है देव सेवा गुरु उपास्ती। हम देव पूजा कहते हैं, देव सेवा गुरु उपास्ती, स्वाध्याय संयम तप, दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। दिने दिने ने प्रतिदिन ये करने चाहिए हर श्रावक को। पंडित देव पूजा लिखी, ऊपर देव सेवा लिखी। पंडित आशाधर जी ने इज्जा और दत्ती के भेद भी महापुराण के अनुसार ही किए हैं। महापुराण से पहले के उपलब्ध किसी साहित्य में ये भेद भी नहीं है। अभी हम यही रुकेंगे। इज्जा ने जो पूजनीय जो ऐसे देवगुरु शास्त्र उनकी पूजा कर, जावानी के ज्ञान पे सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो।